मैं देख रही हूँ, मैंने ऊपर हाथ पकड़ा है और किसी का हाथ बार बार मेरे हाथ के ऊपर आ रहा है। इससे पहले कि वो फिर से मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देते, मैंने ये उठा के चांटा उनके चेहरे पे लगाया। ऐसे शायद हम एक रेप विक्टिम को जन्म देते हैं, क्योंकि रेप विक्टिम जो है उसका एक प्रोसीजर होता है। लेकिन ये चीजें यहाँ नहीं रुकी। इस चीज ने मेरे दिमाग पे इतना बुरा असर डाला, इतना स्ट्रेस्ड रही मैं, कि मैंने अपना रूम जो है वो 6 घंटे के लिए लॉक किया और रोने लगी। एक लड़की की लाइफ में और कितनी कितनी प्रॉब्लम्स होती है, अपना अपने पर्सनल इश्यूज, अपने फैमिली, अपना एजुकेशन और इन सब के अलावा और क्या क्या होता होगा एक लड़की के साथ। एक मिनट, शुरू करने से पहले आप में से कोई सामने आएगा, कोई भी आ जाइए। हाँ, आप आ जाइए, आप यहाँ मेरे से खड़े हो जाइए। मेरा हाथ पकड़िए, हाथ पकड़िए। ओके, अब आप जा सकते हैं। अभी इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे इनकी इंटेंशन पता चल गई कि ये बड़े सहमे से थे कि क्यों ये मुझे हाथ पकड़ने के लिए कह रही हैं। दरअसल हम जो ह्यूमंस हैं, हमें इंटेंशंस का पता चलता है कि जब आपके साथ कोई बात करता है क्यों करता है, और जब आपका हाथ पकड़ता है तो क्यों पकड़ता है। जब आप एक बाप आपके सिर पे हाथ रखता है तो आपको पता चल जाता है कि उसमें कितना प्यार है, और जब आप दोस्तों के साथ बैठते हैं तो उसमें भी आपको पता चलता है कि आप कितने कंफर्टेबल उनके साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रस्ट बॉन्ड होता है। लेकिन जब आपके साथ कोई अपना इस तरीके से आपको छुए, आपका हाथ पकड़े, जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वो कितना टॉक्सिक हो सकता है आपके लिए, ये किस्सा मैं आपको आज बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कसा काय एंड खमा गनी टू एवरीवन। मैं हूँ अनिका नज़ीर और मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से बिलोंग करती हूँ, जो जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन मेरी पढ़ाई और पैदाइश जो है वो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से हुई है। मतलब मेरी जिंदगी का जो ज़्यादा हिस्सा है वो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में गुजरा है, या यूँ कहूँ तो शहर खास बहुत ख़ास है मेरे लिए, क्योंकि इससे मेरी बचपन की कुछ खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे याद है जब मैं सिर्फ 7 साल की थी तो हमारा जो स्कूल है वहाँ पे एक एनुअल फंक्शन होने वाला था, और उस एनुअल फंक्शन में एनुअल रिजल्ट्स भी आने वाले थे, और एक डिबेट कंपटीशन हुआ था स्कूल के अंदर जहाँ 3-4 हज़ार बच्चे पढ़ते थे, उनमें हुआ था और उसमें मैंने भी पार्ट लिया था। और जब एनुअल फंक्शन स्टार्ट हुआ, वहाँ सबके पेरेंट्स आए हुए थे, सब बच्चे थे, सब फैकल्टी थी, तो जब रिजल्ट्स अनाउंस होने शुरू हुए तो मेरे प्रिंसिपल जब सामने स्टेज पर आए तो उन्होंने कहा, उनकी लाइन ये थी कि इस बच्ची ने न सिर्फ अपना बल्कि अपने माँ बाप और अपने पूरे स्कूल का नाम रोशन किया है, और ये बोल के मेरा नाम लिया। और मैं छोटी सी थी और खुशी से जल्दी जल्दी स्टेज पर जाके उनके सामने खड़ी हो गई, और उन्होंने मेरे हाथ पे एक ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट थमा दी। मेरे छोटे छोटे हाथों में वो ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देख के मेरे माँ बाप को मैं जब वहाँ स्टेज से देख रही थी और सब लोगों की तालियों की गूंज मुझे सुनाई दे रही थी, तो इसके बीच में मैं जल्दी से स्टेज से उतर के अपने माँ बाप के पास गई और उन्होंने मुझे गले लगाया, और जैसे मुझे उन पर नज़र पड़ी उनकी आंखों से वो खुशी के आंसू बह रहे थे और पीछे वो तालियों की गूंज थी। और वहाँ जब आज मैं अपने आप को देखती हूँ तो लगता है कि मेरी जर्नी जो शुरुआत हुई है मेरी जर्नी की, वो वहाँ से उन तालियों की गूंज से हुई है। ज़िंदगी का यही दौर चलता रहा, फ्लक्चुएशंस थी लाइफ में, बट फिर भी आगे बढ़ने का सोचा था। और ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स में हमेशा मैं बचपन से ही एक आउटस्पोकन लड़की रही हूँ, और हमेशा हर चीज़ में मुझे पार्ट लेना होता था, और इन सब क्वालिटीज़ को देख के मेरे जो टीचर्स हैं वो मुझे अलग अलग नामों से पुकारने लगे, वर्सटाइल अनिका, ऑलराउंडर अनिका, ये सब मेरे नाम हुआ करते थे मेरे स्कूल में। तो ये दौर आगे बढ़ता गया और मेरी एजुकेशन ऐसे ही चलती रही, और मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो मैं कॉलेज जाती थी, और कॉलेज कुछ दूर था, मेरी जो कॉलेज था जहाँ मैं रहती थी वो उससे कुछ फासला था, तो हम ट्रैवल करना पड़ता था लोकल बस में। यहाँ पे एक और पैरामीटर देखने को मिला लाइफ का, क्योंकि नई नई कॉलेज में एंटर हुई थी, टीन एज थी, तो टीन एज में बड़ा और जोश होता है, जब आप ऑलरेडी एक आउटस्पोकन लड़की हो तो आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं और बस निडर होके खड़े हो जाते हैं किसी भी जगह। तो जब मैं लोकल बस से ट्रैवल करती थी, काफ़ी भीड़ होती थी बसों में, मुझे भी कॉलेज पहुंचना होता था तो मैं उसी भीड़ में मुझे जाना आना जाना पड़ता था। एक बार मैं ऐसे ही बस में चढ़ी और भीड़ थी तो काफ़ी मैं भी खड़ी हो गई बस में, क्योंकि सारी सीट्स जो है बुक थी। और भीड़ में देखा जब बस चल रही है तो ऊपर एक हैंडल होता है गाड़ी में, जब उसको आप पकड़ते हैं ताकि आप गिरे नहीं जब गाड़ी रुकती है। तो तब क्या हुआ कि मैं देख रही हूँ, मैंने ऊपर हाथ पकड़ा है और किसी का हाथ बार बार मेरे हाथ के ऊपर आ रहा है। तो मुझे लगा कि शायद बस में भीड़ भाड़ है तो शायद गलती से किसी का लग गया होगा। मैं अपना हाथ हटाती हूँ तो मेरे हाथ के ऊपर फिर से एक हाथ आ जाता है। मैं जब दो चार बार देखती हूँ तो पता चलता है कि एक और भाई साहब मेरे साथ में खड़े हैं, और वो डेलिब्रेटली, जब मैं उनको देखती हूँ कि उनके इंटेंशन समझ आते हैं कि डेलिब्रेटली मेरे हाथ में जहाँ रखती हूँ ये ऊपर रख देते हैं, मैं जहाँ रखती हूँ ऊपर रख देते हैं। उन्हें लगा कि शायद मैं कुछ बोलूँगी नहीं उनसे, लेकिन इससे पहले को कि वो फिर से मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देते, मैंने ये उठा के चांटा उनके चेहरे पे लगाया। और अभी मैंने चांटा मारा ही नहीं था कि आसपास के लोग हैरान हो गए कि क्या बात हुई। मैंने कहा कि आप देखें, मैंने अगर मेरा अगर हाथ ऊपर है तो ये इनका हाथ बार बार मेरे हाथ के ऊपर क्यों आ रहा है? एक बार गलती होगी, दो बार गलती, तीन बार गलती होगी, ये पाँच छः बार से मैं इनको देखे जा रही हूँ। बस मेरा इतना बोलना था कि लोगों ने उसको उठा उठा के पटक पटक के गाड़ी से नीचे उतार दिया। लेकिन मैं थोड़ी सी परेशान हो गई, सुबह सुबह का माहौल आपका, मतलब बहुत आप फ्रेश होते हो और आप कॉलेज जाना चाहते हो और आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो आपका मूड ख़राब हो जाता है। तो जैसे ही स्कूल पहुंची, मेरी आदत है जब भी मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मैं कोना पकड़ के बैठ जाती हूँ और मुझे किसी से बात नहीं करनी होती है जब तक मेरा मूड ठीक नहीं हो जाए। लेकिन मेरे भी कुछ दोस्त है वहाँ पे, वो भी आके आसपास बैठ गए तो बोला क्या बात है आज तुम चहक महक नहीं रही हो, क्योंकि दोस्तों को भी पता चल जाता है कि आप ठीक हैं कि नहीं हैं। तो मैंने कहा कि ऐसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मुझे बड़ा बुरा लगा और मैंने उसको चांटा मार दिया। तो वो पहले हंसने लगे, बोला अच्छा किया, लेकिन फिर एक एक करके सब बोल दे पता है मेरे साथ भी गाड़ी में ऐसे हुआ। तो दूसरी दोस्त उठ के बोलती है हाँ मेरे साथ भी हुआ, मैं मेडिकल शॉप पे गई थी या किसी शॉप पे गई थी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो मैं उनको देख रही हूँ और मैं अपनी जगह सोच रही हूँ कि एक लड़की की लाइफ में और कितनी कितनी प्रॉब्लम्स होती है, अपना अपने पर्सनल इश्यूज, अपने फैमिली, अपना एजुकेशन और इन सब के अलावा और क्या क्या होता होगा एक लड़की के साथ। तो बस ये दिमाग में ये चीज़ थी कि इस बात को दबाना नहीं है, जब तक आप बात नहीं करोगे आपके साथ ये होता रहेगा। तब मुझे एहसास हुआ कि जिस लड़के को मैंने चांटा मारा, अगर मैंने चांटा नहीं मारा होता वो कल को फिर बस में चढ़ के किसी और लड़की के साथ ही करता। तो ऐसे शायद हम एक रेप विक्टिम को जन्म देते हैं, क्योंकि रेप विक्टिम जो है उसका एक प्रोसीजर होता है, उसने पहले ही डायरेक्टली रेप नहीं किया होता है, उसने पहले बहुत सारी लड़कियों को मॉलेस्टेट किया होता है। तो जब एक लड़की अपना मुंह नहीं खोलती, आपको लगता है कभी कभी आपको जब कोई छेड़ता है तो आप भाग जाते हैं और आप खुश हो जाते हैं कि चलो मैं तो भागे, मैंने अपने आपको बचा लिया। नहीं, आपने आपको बचाया नहीं, आपने एक और लड़की की ज़िंदगी खतरे में डाली है, क्योंकि जिस लड़के ने आपको छेड़ा है वो, आपने जब उसे कुछ नहीं बोला वो जाके किसी और लड़की को छेड़ेगा, और ऐसे ही छेड़ते छेड़े छेड़ते उसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि वो रेप पे उतरेगा। उसके बाद मैं फिर से अपनी इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के अपनी पढ़ाई में लग गई और अपनी सारी वो अपनी स्ट्रगल में लग गई फिर से कि मुझे एक गोल सेट करना है और वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन ये चीज़ें यहाँ नहीं रुकी, आगे जब कुछ वक्त बीता तो मुझे एक बार पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने अपने पापा को कॉल किया कि पापा मुझे पैसे चाहिए तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो मैं फिर से जब पापा मुझे कॉल करते हैं वो कहते हैं कि बेटा यहाँ से कोई रिलेटिव आ रहा है तो मैं उनके हाथ आपके पैसे भेज देता हूँ, आपको जो जिसमें जिस काम के लिए चाहिए तो आप टेंशन मत लो। मैंने बोला ठीक है। कुछ वक्त गुजरा, एक दो तीन घंटे हो गए तो मुझे कॉल आता है और वो कहते हैं कि आपके पापा ने पैसे भेजे हैं और आप ये ले लो, आप बाहर किसी जगह, उन्होंने मुझे जगह का नाम बताया। तो मैं जब अपने हॉस्टल से बाहर आई और उनसे सड़क पे मिली, तो जैसे ही मिली उन्होंने मुझे, मैंने अच्छे से उनको ग्रीट किया वगैरह, तो ग्रीट करते टाइम फिर जब मैंने उन्होंने मेरे हाथ में पैसे थमाए तो उन्होंने मेरे हाथ को इतने डेलिब्रेटली गंदे तरीके से पकड़ा और मोड़ने जैसे लगे, मुझे मैंने सीधे उनको धक्का दे के पीछे कर दिया। लेकिन जो आउटस्पोकन लड़की हमेशा बोलती रहती थी उसका गला चोक हो गया और वो बोल नहीं पाई, कि क्योंकि जो सामने खड़ा इंसान था उसे वो जानती थी, वो एक नोन पर्सन था, उसका रिलेटिव जिसको उसने बचपन से देखा था एक अच्छे रूप में। तो बस मैं वहाँ से निकली और अपने हॉस्टल के रूम में आ गई, और वहाँ जब पहुँची तो इस चीज़ ने मेरे दिमाग पे इतना बुरा असर डाला, इतना स्ट्रेस्ड रही मैं कि मैंने अपना रूम जो है वो 6 घंटे के लिए लॉक किया और रोने लगी कि अपना जो कोई है जो आपको जानता है वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो 2-3 दिन गुजरे और मेरे घर से जब कॉल्स आती थी तो मैं स्ट्रेस थी, लेकिन माँ बाप जो होते हैं उनको पता चल जाता है कि हमारा बच्चा परेशान है। तो मेरी माँ मुझे कॉल करके पूछने लगी कि क्या बात है, क्या हुआ है आपके साथ, आप ऐसे क्यों हो, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। तो मैं रोने लगी और मैंने कहा कि ऐसे पापा ने भेजा था किसी को, तो उन्होंने मुझे ऐसे उन्हें गलत तरीके से मेरे हाथ पकड़ा। तो मेरी मम्मा, बहुत गुस्सा आया उनको, और वो टाइम था जब मेरी माँ एक खड़ी हो गई मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए, और उसी वक्त उस आदमी के घर गई। और वो मेरे पापा और मम्मा बात नहीं करते हैं आपस में, बट उस वक्त मेरी मम्मा ने मेरे पापा को कॉल किया और बोला कि ऐसे हुआ है। तो फिर उसके बाद मेरी माँ और मेरे पापा दोनों वहाँ गए और उस इंसान को इतना सुनाया कि वो अपनी गलती उसने एक्सेप्ट की और मुझसे माफ़ी मांगी, और उसकी पूरी फैमिली ने मुझसे माफ़ी मांगी। तो इस इंसिडेंट ने इतना मुझे स्ट्रेस्ड छोड़ा था कि ये इंसिडेंट तो ख़त्म हो गया, उस इंसान ने मुझसे माफ़ी भी मांगी, लेकिन मैं बहुत सहमी सहमी सी रहने लगी। और इसी दौरान मेरा एक कॉन्टैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ और जिसका नाम सेव यूथ सेव फ्यूचर है, और मैं एज अ ऑडियंस वहाँ गई। और जब मैं बैठी थी, जो स्ट्रेस था मेरे दिमाग में उस इवेंट के दौरान मुझे ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारे अपने जैसे यूथ को देखा जो अपने बारे में बात कर रहे थे, और इस चीज़ ने मुझे बहुत अपनी तरह अपनी तरफ खींचा कि नहीं, बात करना बहुत ज़रूरी है, हम कहीं सहम के नहीं बैठ सकते। तो ऐसे उनके इवेंट्स होते रहे और उनका मेरे साथ कांटेक्ट जब हुआ, उन्होंने कहा कि आप एज अ स्पीकर आओ, और ये बातें जो मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए थे मैंने वहाँ पे बोले, तो वहाँ भी बहुत सारी लड़कियाँ गैदर होके मेरे पास आई। उन्होंने बोला हमारे साथ भी ऐसा होता है बट हम बोल नहीं पाते, आपने बोला तो आपकी वजह से हमें भी अब हिम्मत आई कि हम अपने पेरेंट्स को बोले कि हमारे साथ ऐसा होता है। तो जब ये सब इंसिडेंट हुआ तो उन्होंने मुझे मेरे सामने एक ऑफ़र रखा कि हमारे साथ एज अ वुमेन्स विंग हेड काम करें आप। तो मुझे भी इस बोलने का बड़ा शौक था, तो मेरे लिए एक ये प्लेटफॉर्म था कि मैं इसके थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट करूं। ये 2020 की बात थी जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, और एक साल 6-7-8 महीने में मैंने इतना काम किया, इतने वर्कशॉप्स किए हुए मैंने एम्पावरमेंट में, ड्रग डी एडिक्शन पे किए, डीरेडिकलाइजेशन पे काम किया, इतना काम किया कि मेरे काम को इतना एक्नॉलेजमेंट मिला। एक ही साल में 2021 में मुझे एज अ कश्मीर यंग अचीवर्स अवार्ड मिला, और मेरा काम रुका नहीं। उसके बाद मैं काम करती गई उनके साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ मैंने काम किया, हमने डीरेडिकलाइजेशन का प्रोग्राम उन्होंने हमें सेटअप करके दिया, उन्होंने कहा कि आप इस पे एज अ प्रोग्राम हेड रहो। तो उस काम को भी मैंने इतना जल्दी समझा कि मैं लोगों के साथ घुल मिल गई और उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, यूथ पार्लियामेंट्स करवाए, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन्स की जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड जितने भी टूर्नामेंट्स हैं वो करवाए। तो इतना काम किया कि लोग और एक्नॉलेजमेंट देने लगे, इज्जत देने लगे, सम्मान देने लगे, और 2022 में वुमेन ऑफ स्टील अवार्ड से मुझे नवाजा गया। और सबसे बड़ा अवार्ड जो मुझे ज़िंदगी में मिला वो था कि अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करने का, कि एक इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो अपने लिए आवाज़ उठा सकता है और दूसरों की आवाज़ बन सकता है। और जब ये रियलाइजेशन दिमाग में आया तो एक थॉट जैसे दिमाग में आया और उसको मैंने लफ्ज़ों में ऐसे लिखा कि मुझे आसमान की बुलंदी अक्सर लुभा रही है, शायद मुझे मेरा मियार पता चला है, शायद मुझे मेरा स्टेटस पता चला है कि मैं क्यों हूँ उस दुनिया में और मेरा क्या काम है, उसको करने लगी मैं। बस कहना मुझे इतना है कि हम जब इस दुनिया में आते हैं अकेले आते हैं, अब जाते हैं तो अकेले जाते हैं, लेकिन इस आने और जाने के बीच में एक वक्त जो हमें मिलता है, हमारे जाने के बाद हम पीछे क्या छोड़ जाते हैं, क्या लेगेसी छोड़ के जाते हैं, वो मैटर करती है। और आप क्या लेगेसी छोड़ कर जाना चाहते हैं वो आप डिसाइड करें। और मैं अपनी तरफ से हर एक लड़की को कहना चाहूँगी, अपने लिए ही नहीं बल्कि हर एक उस लड़की के लिए आवाज़ उठाओ जो बोल नहीं पाती है, आप दूसरों की आवाज़ बनो, अपनी आवाज़ बनो। कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं आप लड़कियों के लिए। मैं उड़ान भरने से नहीं डरती, मैं आसमान में उड़ने का हौसला रखती हूँ। मैं उड़ान भरने से नहीं डरती, मैं आसमान में उड़ने का हौसला रखती हूँ। मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, मैं बेटी से ज्यादा हुनर रखती
हूँ। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।